ओम शांति। बाप दादा के बहुत विशेष रत्न जिनका जीवन विज्ञान और अध्यात्म का संगम है, ऐसी महान विभूति आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी हम सबके बीच में हैं। हम सब उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप अपनी किशोर अवस्था में 1962 में परिवार सहित विद्यालय के संपर्क में आए। 1963 में 17 वर्ष की उम्र में आप लखनऊ में ब्रह्मा बाबा से मिले और ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी ने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया। 1964 से ही आपका आध्यात्मिक सेवाओं का सफर शुरू हो गया। अपनी एमटेक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद 1967 में आपने ओएनजीसी में कार्य शुरू किया और 28 वर्षों तक ओएनजीसी में सर्विस करने के बाद 1996 में आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर विद्यालय के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं शुरू की। लौकिक सेवा करते हुए भी आप अलौकिक सेवाओं में, ईश्वरीय सेवाओं में सहायक रहे। जहां जहां भी आपकी पोस्टिंग रही, प्यारे बाबा ने आपको वहां वहां अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनाया, जैसे धनबाद, गुजरात, आसाम, बिहार आदि अनेक स्थानों पर आप सेवाओं के निमित्त बने। साथ साथ आपने भारत में लगभग 20 शहरों में आध्यात्मिक आर्ट गैलरीज का भी निर्माण किया है। आदरणीय जगदीश भाई जी की प्रेरणाओं से जब विंग्स की सेवाएं शुरू हुई तो विभिन्न विंग्स की सेवार्थ आपने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बनाने में भी अपना योगदान दिया है और वर्तमान समय आप संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर विंग के आप चेयरपर्सन हैं। ज्ञान सरोवर परिसर के आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। विदेशों में भी आपने बाबा के ज्ञान की अलख जगाई है। हमें जानकर ये बहुत गौरव और हर्ष होता है कि आपकी लीडरशिप में भारत और नेपाल में 22 से अधिक पर्यावरण जागृति एवं डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स का सफल आयोजन किया गया और आपकी इन्हीं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1992 में भारत सरकार के द्वारा आपको पर्यावरण श्री अवार्ड से नवाजा गया। 2004 में आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस यूएसए तथा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एडल्ट्स यूके के द्वारा भी इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में राजस्थान की राज्यपाल द्वारा आपको ग्रीन आइडल अवार्ड से भी नवाजा गया। साकार ब्रह्मा बाबा की पालना का आपको परम सौभाग्य रहा। ये भी आपका सौभाग्य रहा कि जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त की, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो आप बाबा के उस कर्मातीत स्थिति के साक्षी बने। बाबा की वरदानी दृष्टि में आप पले और इसी विषय को आज हमारे बीच में रखेंगे। वरदाता से वरदान प्राप्त करने की विधि क्या है, आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी?
ओम शांति। एक बार हम सब उस विधि से ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे जैसा आपने कल भी किया था और यज्ञ के आदि में हम सब ने सुना है। ब्रह्मा बाबा और सभी वत्स मिलकर ओम ध्वनि करा करते थे। अंदर हम सब एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे, उस श्वास को निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ वास्तव में ये ओम शांति का जो महामंत्र है या संगम युग का सबसे बड़ा वरदान यही है। मन मना भव और ये वरदान की स्थिति में स्थित हो जाना। उच्चारण एक बात है, वो बातचीत में ओम शांति कहना वो भी एक बात है, लेकिन उस स्थिति में स्थित होकर के ओम शांति की स्थिति में मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ और सभी को उसी दृष्टि वृत्ति से देखना, व्यवहार करना, ये वास्तव में सबसे बड़ा वरदान प्राप्त करना है और दूसरे को भी वरदान देना है। मुझे भी अपने इस जीवन में शुरू से ही वरदान प्राप्त करने का काफी सुअवसर मिला और आज का विषय भी वैसा ही है। किस प्रकार से वरदाता द्वारा वरदानों की प्राप्त करने की क्या विधि है, क्योंकि विधि अगर मालूम होती है तो विधि से ही सिद्धि होती है और हमारा जीवन वरदानों से भरपूर हो जाता है। पुरुषार्थ तो हम सभी कर रहे हैं और ये पुरुषार्थ अपने अपने यथाशक्ति अनुसार चारों विषयों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ एक चीज है और वरदान दूसरी चीज है। पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, सफलता भी यथासंभव मिलती है, लेकिन अगर वरदान मिलता है, वरदान शब्द ही ऐसा है कि जब वरदान प्राप्त करने की इच्छा होती है तो हम सब ने ये पढ़ा है, सुना है, जो भी भक्त होते थे, सन्यासी, किसी अपने इष्ट देव से वरदान प्राप्त करना चाहते थे तो वो तपस्या किया करते थे और वो तपस्या करके इष्ट देव को संतुष्ट, खुश किया करते थे और जब वो इष्ट देव उनके प्रसन्न हो जाते थे तो वह अपने भक्त को वरदान दिया करते थे। ऐसा हम सब पढ़ते आए, सुनते आए। तो सारी बातें हमारे संगम युग की ही बनी हुई हैं। इस संगम युग में बाबा जो भी हमें कहते हैं, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया करके दिखाया और उस बात को हमने जीवन में धारण किया अगर, तो वो वरदान स्वरूप हमारे लिए हो जाता है। इसीलिए एक कहावत और भी है, तुरंत दान महापुण्य। ये किस लिए है तुरंत दान महापुण्य? हम सब लोग रोज बाबा की मुरली सुनते हैं और अमृत वेले से लेकर सारा दिन भर कार्य व्यवहार में रहते हुए बाबा का मनन, चिंतन, सेवा, धारणा सब चलता रहता है। इसमें विशेष बात यह है कि बाबा ने जो आज कहा, तुरंत दान जो है बाबा ने आज कहा और आज ही हमने उसे उसी रूप में स्वीकार करके उसे जीवन में धारणा में लाया, ये है तुरंत दान महापुण्य। और इस रिफरेंस में बाबा कई बार उदाहरण दिया करते हैं, ताजा फल खाते हैं उसमें शक्ति होती है, स्वाद भी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को आदत होती है, फल लिया, दो चार दिन रखा, बासी हो गया और उसके बाद उसे स्वीकार किया, तो इसे तुरंत दान महापुण्य नहीं। ये जो बाबा ने आज कहा उसमें आज की परिस्थितियों के मुताबिक उसमें बाबा का ज्ञान और धारणाएं, सावधानियां उसका समाविष्ट होता है। इसीलिए प्रतिदिन की मुरली हम रोज सुने, खाली सुनने तक ही सीमित न रहे, उसकी कुछ बातों को हम उसी दिन ही अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में लाएं। तो ये रियल सेंस है बाबा का कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करना। और ये बाबा जब साथ ही साथ रहता है कंबाइंड, क्योंकि उस दिन बाबा ने जो कहा उसी दिन ही हमने किया, बाबा साथ में कंबाइंड है, तो बाबा की शक्ति भी रहती है और उस कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें ये करना है कि पुरुषार्थ तो हमारे जीवन का अंग है, वो करना ही है, लेकिन उस पुरुषार्थ को वरदान में हम बदल दें। प्रतिदिन जो कहा बाबा ने, ताजा ताजा कहा, उसको उसी दिन ही प्रैक्टिकल में लाएं। तो इसी बात को बाबा कहते हैं, जब पुरुषार्थ करते हैं तो मेहनत लगती है, मेहनत होती है। और बाबा कहता है, बाबा को बच्चों की मेहनत देख के अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है? मोहब्बत। मेहनत की बजाय बाबा के स्नेह में, प्यार में डूब करके हम वही कार्य करते हैं तो वो मेहनत मेहनत नहीं लगती, वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है, स्नेह में बाबा के। और जितना जितना स्नेह होता है, जिस व्यक्ति से भी स्नेह होता है उसका संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। तो इसीलिए बाबा को हम पूरा सहयोग चाहते हैं, बाबा की डायरेक्शन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। उन सब के लिए ये आवश्यक है कि हम उसको अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत न करके मोहब्बत के रूप में कन्वर्ट करें। मुझे अपने स्टूडेंट डेज के वो कुछ एक दो बातें याद आ रही हैं, बाबा किस प्रकार से, हम कोई भी संकल्प करते हैं, कार्य चाहे बाद में करें, लेकिन अगर उस संकल्प में दृढ़ता होती है तो वो बाबा तक पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया, बाबा तक किया। मुझे याद है धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो बाद में आईआईटी हुआ, वहाँ पर हमने अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई की 63 से 67, फोर ईयर कोर्स था, और 1962 में लगभग 91 में आए थे। तो जब वहाँ जाने का हुआ तो बाबा ने से हमने पूछा, बाबा वहाँ अगर जाएंगे हॉस्टल में खाना पड़ेगा, अन्न दोष लगेगा, तो इसीलिए वहाँ नहीं पढ़ते, जाते कहीं और एजुकेशन कर लेते हैं अथवा सेवा में जॉब में बिजी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, तुम्हें तो ये पढ़ाई पढ़नी है इंजीनियरिंग, और बाबा हर बच्चे का जो कार्य क्षेत्र है, हर बच्चे की जीवन कहानी जानते हैं, तो इसीलिए तुम्हारे द्वारा बाबा को बहुत सेवा करानी है देश और विदेश की। उस समय बाबा ने कहा, जब पहली बार बाबा को मिले 63 में, तो बाबा ने कहा, तुम वहाँ जाओ और तुम्हें पढ़ना है। जबकि हमसे पहले दो और कुमार, उन्होंने बाबा से पूछा, तो उन्होंने बाबा ने कहा, एक को कहा कि ठीक है तुम अपने फादर के बिजनेस में साथ में लग जाओ, तुम्हारा ग्रेजुएशन तो हो गया पढ़ाई, और दूसरे को बोला कि तुम्हारा भी पढ़ाई हो गई, तुम जॉब कर लो। दो के बाद तीसरा हमारा नंबर आया। माउंट आबू में बाबा की झोपड़ी में हम सब लोग मिला करते थे, कई बार बाबा के कमरे में भी, तो हमारे टर्न में बाबा ने कहा, नहीं तुम्हें तो पढ़ना है। तो मैंने कहा, बाबा ये तो डबल स्टैंडर्ड जैसा हुआ, उन दो को आपने बताया कि आप सेवा में लग जाओ, और मुझे अभी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तब बाबा ने ये कहा था, सबकी कर्म कहानी जीवन कहानी अलग अलग है, बाबा सबका भविष्य जानता है, इसलिए तुम्हारे द्वारा बाबा को बहुत बहुत विदेश देश विदेश की सेवा करानी है। उस निमित्त वहाँ पढ़ने गए, और हमारे साथ वहाँ हॉस्टल में रहते थे। और बाबा ने कहा कि बच्चे, हमने बाबा से पूछा कि बाबा वहाँ पर तो हॉस्टल में खाने पड़ेगा, तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, जब हम अपनी दृष्टि वृत्ति से नई सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं, नई सृष्टि की रचना कर लेते हैं, तो क्या भोजन को थोड़ा पवित्र नहीं कर सकते? तो एक तरफ तो बाबा ने ये बोला कि वहाँ पर दृष्टि दे के वहाँ पवित्र भोजन करके स्वीकार करना, दूसरी तरफ बाबा ने युक्ति भी बताई कि वहाँ जो कुक होता है उसको हाथ में करना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देना हर महीने, और वो आपके लिए बिना प्याज लहसुन वगैरह का खाना निकाल करके अलग कर देगा। तो वो देखा, भगवान के महावाक्य थे, एक बार के कहने पर ही वो राजी हो गया, और उसने वहाँ पर पवित्र, रिलेटिवली पवित्र भोजन देना शुरू किया। तो वहाँ हॉस्टल में तो खाते थे, तो इस प्रकार से वहाँ खाते थे। लेकिन इस रेफरेंस में मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वहाँ बाबा एक तरफ तो ये बताया, और दूसरी तरफ बाबा प्रति सप्ताह लेटर लिखते थे। धनबाद में सेंटर तो था नहीं कोई, तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे वहाँ पर सेंटर खोलना है, अब वहाँ पर तुम्हें अब मेहनत करनी है, मकान ढूंढो। अब कहाँ, तो हम लोग स्टूडेंट, खुद ही घर से खर्चा आता था पढ़ने के लिए, और कहाँ बाबा ने इस बात को बोला। लेकिन बाबा बोलता है या निमित्त दादियाँ, निमित्त बड़ी बहनें, कोई बात अगर बोलती हैं तो वो सिर्फ बोलती नहीं है, उसमें शक्ति भी भरती हैं, सफलता की शक्ति भी मिलती है और कार्य करने की विधि भी उसमें समाई होती है। तो उस रीति से वहाँ पर मकान ढूंढा और हमारे साथ एक भाई शुरू के ही 3-4 मास में ज्ञान दे दिया उन्हें हॉस्टल में, वो भी निकल गए और वो भी आज तक ज्ञान में चल रहे हैं, विनोद जैन करके, वो अधिकतर अमेरिका में ही रहे हैं, अभी तो कुछ वर्ष से यहाँ आ गए हैं। तो हम दोनों ने ही वहाँ पर इस प्रकार से मकान ढूंढ करके, और पास में सिंदरी सेंटर था, सिंदरी से बहन को कहा, बाबा को लिखा, तो बाबा ने वहाँ पर एक सुरेंद्र बहन जी थे जो उन्हें वहाँ भेजा, और उन्हें वहाँ भेज करके बाबा ने कहा कि ये बच्चे अब सेंटर खुला है, अब सेंटर पर ही दोनों भोजन करेंगे। तो इस तरह बाबा ने एक तरफ सेंटर भी खुलवाया, और किस तरह खुलवाया, कहाँ तो हमारा सिलेक्शन बॉटम से नीचे से 7वें 8वें 150 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, 142वां नंबर था। लेकिन जब वहाँ पर एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है और स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ इंटरनल एग्जामिनेशन दिया और सिर्फ 10% को ही स्कॉलरशिप मिलती थी, और उस जमाने में 75 रुपीस तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, 75 रुपये है स्कॉलरशिप पर मंथ। तो वो स्कॉलरशिप में नाम आ गया हमारा, और इस तरीके से सेंटर भी खुल गया और पढ़ाई भी चलती रही। तो भगवान के महावाक्य, लेकिन इस रेफरेंस में बताते हैं, वहाँ एक भाई आने लगे ज्ञान में, बहुत अच्छा तीव्र चलते थे, तो उनकी लौकिक बच्ची की मैरिज थी, तो उन्होंने कार्ड दिया बहन जी को और सबको, तो बहन जी ने बोला कि ठीक है, ये हॉस्टल में तो खाते ही हैं, अब वहाँ पर आपके यहाँ मैरिज में भी आ जाएंगे, हम लोग तो जाते नहीं। तो लेकिन वो बहन जी संदेशी थे, बीच में गुरुवार पड़ा, तो उन्होंने वहाँ पर, बाबा ने कहा, बच्ची तुमने ये क्या किया? क्या हुआ बाबा, कि ये क्यों बोला कि ये दोनों बच्चे वहाँ खा लेंगे? कि बाबा हमने सोचा हम लोग तो कहीं खाते नहीं हैं, बहने वगैरह और दूसरे भाई जो पवित्र भोजन अपने घर में स्वीकार करते हैं, ये तो अभी हॉस्टल में ही खाते हैं, तो इसलिए वहाँ भी वहाँ चले जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि नए भाई हैं लेकिन अनन्य जैसे हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, वहाँ हॉस्टल में खाने की छुट्टी कुछ मास के लिए बाबा ने दी थी, वो श्रीमत थी, लेकिन यहाँ ये श्रीमत नहीं है कि वो जाके कोई मैरिज में खाएं, आज एक जगह खाया कल दूसरा भी एक्सपेक्ट करेगा। तो श्रीमत का हमें मालूम होना चाहिए, जैसे बाबा कहता है कोई मिलिट्री में है उसका काम ही है गोली मारना, और गोली मारा कोई मर गया तो उससे उसका विकर्म नहीं बना, लेकिन कोई क्रोधवश किसी को थप्पड़ भी मार दिया या कोई छोटा सा वो कर दिया विकर्म, उसमें उसका बहुत बड़ा विकर्म बन जाता है। तो इस कारण से एक ड्यूटी का बात होती है और एक होती है श्रीमत की बात, तो इसीलिए श्रीमत बाबा ने दी। तो इस बात में हमें समझकर एक ये चलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने विवाह नहीं गए, तो लेकिन दूसरी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हम हॉस्टल में रहते थे और सेंटर नया नया ही खुला था, और वहाँ पर बहन जी वगैरह एक सुरेंद्र बहन आते थे जिन्होंने अभी पिछले मास ही शरीर छोड़ा, और वो बनारस की इंचार्ज थी। तो एक दिन हमने हॉस्टल में सोचा हाँ, कल गुरुवार है, चलो बाबा को भोग लगाते हैं, बनाते हैं और हम लोग भोग बाबा की थाली में रखेंगे। तो थे तो हम हॉस्टल, फोन की फैसिलिटी नहीं थी, कोई फोन नहीं, तो ना बहन जी कोई बता सके, ना कोई उनके द्वारा बाबा को संदेश भेज सके कि कल गुरुवार है हम भोग लाएंगे। लेकिन अगले दिन ही सुबह है, बिल्कुल बड़े प्रेम से भोग बनाया बाबा के लिए और भोग छोटा सा डब्बी में भोग ले करके जब तक सेंटर पहुंचे तब तक बहुत देर हो गई थी। बहन जी बैठे तो हुए थे सिंदली पर लेकिन ऊपर नहीं गए थे ध्यान में, तो छोटी बहन को हम लोगों ने बोला कि बहन जी ये थोड़ा वहाँ पर भोग की थाली में रख दीजिए, तो उसने भोग की थाली में रख दिया और जैसे ही वो रखा तुरंत ही संदेशी वतन में चली गई। उसके बाद तो संदेशी ने बाबा को कहा कि बाबा हमेशा तो मैं जब भी आपके पास गुरुवार को भोग लाती हूँ या वतन में आती हूँ आप मुझे 5-10 मिनट में खींच लेते हैं, अब की बार तो मैं 1.5 घंटा 1 घंटा बैठी रही, मैंने बहुत कोशिश करी वतन में जाऊं लेकिन आपने मुझे खींचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा बच्ची मेरे दोनों बच्चे वहाँ हॉस्टल में इतने प्यार से भोग बना रहे थे और जब तक उनका भोग आके थाली में नहीं रहता तब तक मैं तुम्हें कैसे खींचता। तो देखो हम लोग संकल्प करते हैं, संकल्प बाबा तक पहुंच जाता है, ना हमने बहनों को बताया था ना बहनों के द्वारा संदेशी को। तो इसीलिए कल भी बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें दृढ़ता की बात कही। तो इसीलिए दृढ़ता से अगर हम कोई शुभ संकल्प करते हैं भले उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ दिन के बाद हो, उसे कार्य व्यवहार में लाने में देर हो, लेकिन अगर हमने संकल्प कर लिया तो हमारा संकल्प से हमारा भाग्य तो बन ही गया। तो ये वरदान की बात है देखो, कि हमारी जो बाबा कहता है कारण तो बहुत आएंगे लेकिन ये ऐसा कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, इसमें तो इतना धन लगता है आदि आदि, लेकिन कारण का निवारण या समाधान करते हुए अगर हम दृढ़तावश संकल्प कर लेते हैं कोई सेवा का, कोई समर्पणता का, तन मन धन संबंध कैसे भी प्रकार की सेवा, तो बाबा बंधा हुआ है उसका फल देने के लिए वरदान के रूप में। तो ये वरदान लेने की फिर विधि क्या हुई, विधि हुई वरदान लेने की विधि कि हम दृढ़ता संकल्प वो करें, संकल्प और उस पर इम्प्लीमेंट करें, भले चाहे थोड़े समय के बाद हो लेकिन उस पर अगर हम कार्य शुरू कर देते हैं तो वो कार्य के लिए सफलता के लिए बाबा बंधा हुआ है और वो बाबा का सफलता का वरदान ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। तो ये कम बात है क्या? तो ये सफलता का वरदान लेने की विधि एक तो दृढ़ता है, दूसरा मेहनत की बजाय मोहब्बत, उसमें हमारा जैसे कि बाबा के साथ ये रहे कि बस प्रेम स्नेह, इसीलिए जितना स्नेह रहता है वो स्नेह जो है वो उसमें बाबा बंधा हुआ है। इस रेफरेंस में वैसे बाबा के साथ हमें 1962 से 69 तक अनेक बार मिलने का चांस मिला, कानपुर में भी पहली बार मिले वो, क्योंकि हम लखनऊ में पढ़ रहे थे और लखनऊ से कानपुर जाना सहज होता है, तो वहाँ भी मिले, दिल्ली में दो बार बाबा आए, दिल्ली में दोनों बार चले गए, क्योंकि जिन दिनों बाबा आते थे उन दिनों या तो इंजीनियरिंग कॉलेज की हमारी कोई छुट्टी हो जाती थी या एक दो बार कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गई और हॉस्टल खाली करने के लिए बोला गया, तो इस रीति से उस छुट्टियों को अवेल कर लिया बाबा के पास। तो आवश्यकता हम समझते हैं, मैं इस बात को बताएं कि भक्ति में भी वरदान कैसे मिलता है। इष्ट देव की कोई तपस्या करता है जैसा मैंने बताया, तो जब हमने पास किया वहाँ 67 में, और तो हमारी पोस्टिंग जो है तीन जगह से आई हुई थी, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से और जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो हम चाहते थे कि हम ऐसा जॉब ऑफिस टाइप का लें 10 to 5, जिसमें हमारा ज्ञान का भी ठीक चलता रहे। तो बाबा के पास गए, तब तो बाबा थे, बाबा की श्रीमत लो, बाबा उसमें तो सफलता ही समाई हुई है। तो बाबा के पास गए, हमें विश्वास था, तो बाबा ने पूछा हाँ बच्चे किस में जाना चाहते हो, तो हमने वो बताया कि भाई दिल्ली में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ भी स्टेबल जॉब है 10 to 5 का, और दूसरा हैदराबाद में है वहाँ भी सेंटर है, तो दोनों जगह से पालना मिलती रहेगी। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा की राय है कि तुम आसाम में जाओ जहाँ तुम्हारी ONGC में पोस्टिंग ऑफर हुई है। अब पूरे आसाम में 7 स्टेट, आसाम, चौथा अगरतला, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब 7 स्टेट, नागालैंड वगैरह, कोई भी सेंटर नहीं था, कोई गीता पाठशाला नहीं थी, कोई स्टूडेंट नहीं था। ये हम आपको बात बता रहे हैं 1967 की, जब साकार बाबा हम लोगों के बीच में थे। लेकिन बाबा ने कहा वहाँ जाओ बच्चे, वहाँ पर मेरे बहुत भोले भाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं संदेश का, तुम जाके वहाँ तुम्हें ये कार्य करना है। तुमने बाबा को कहा कि बाबा वहाँ कैसे पालना होगी, सेंटर भी नहीं है, गीता पाठशाला नहीं है, एकदम नई जगह है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ, सब सुविधा ऑटोमेटिकली तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेगी। तो वहाँ पर गए आसाम में और बस ज्ञान सुनाना शुरू किया। बाबा ने कहा है हमेशा जब बाबा देखता है बच्चा उतना लायक नहीं है, ज्ञान सुनाने वाला बच्चा या बच्ची, और सुनने वाले बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बाबा क्या करता है उनमें प्रवेश करके बाबा ज्ञान सुना देता है। वो चीज का हमने कई बार वहाँ अनुभव किया। वहाँ ज्ञान सुनाते थे, शिव सागर नामक जगह थी आसाम में जहाँ पोस्टिंग हुई, और बहुत शिव मंदिर बहुत बड़ा था, लेक बहुत बड़ी थी। बाबा कहते थे अपने 4 चित्र खोल के बैठ जाओ, कल परसों तो मुरली में बाबा ने 6 चित्र बोला है, और वही चित्र खोल के बैठ जाते थे। बस मंदिर से निकल के आते थे भाई बहने वगैरह और देखते थे, उन्हें थोड़ा समझाते थे, बड़े साधारण रूप में ही। लेकिन करण करावन हार तो बाबा है ना, बाबा जब देखता है निमित्त हम काम कर रहे हैं, तो बाबा क्या करता है, वो वहाँ पर ज़्यादातर मारवाड़ी बिजनेस जो है मारवाड़ियों के हाथ में है, हिंदी भाषी होते हैं तो इसीलिए वो सहज समझ जाते हैं, लेकिन आसामीज वगैरह वो भाषा अलग होती है। उसमें ये ही आते थे, और मारवाड़ियों का एक अपना मंदिर था, उसके ऊपर उन्होंने हॉल बनाया हुआ था। तो बस कुछ दिन में ही उन माताओं ने कहा आप वहाँ पर आके ज्ञान सुनाओ, बहुत अच्छा ज्ञान है, और क्योंकि ज्ञान की बातें तो आत्मा परमात्मा बहुत अच्छा सबको लगता है, जब धारणाओं की बात होती है तब कठिनाइयों की बात आती है। तो वहां पर जाके सुनाते थे तो कमाल बाबा की कि ज्ञान सुनाया और छोटी छोटी बच्चियां चार पांच थी मारवाड़ियों की, अपने पोते पोता आदि आदि, वो ध्यान में चली जाती थी साक्षात्कार में। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला तो वहां पर भी साक्षात्कार का पाठ, तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था। ऊपर जाके भाई कोई बताते थे अनुभव, हमने कृष्ण को देखा, उसके साथ रास किया और सतयुग का दृश्य देखा। अब उन्हीं की ही अपनी पोती पोतियां वगैरह, और वो ही अगर यही बात बोलेंगे तो वो लोगों को तो विश्वास होगा। तो इस कारण से ये है वरदान, क्योंकि जब अपनी सामर्थ्य नहीं होती है लेकिन बाबा को हम अर्पण कर देते हैं तो बाबा वरदान रूप में हम बच्चों का कार्य करता है, हम बच्चों की शक्तियां बढ़ता है। तो वहां पर जब ऐसा बहुत होने लगा, थोड़े समय में ही बहुत सेवा जम गई। तो भाव क्या है, आज भी भले चाहे साकार बाबा नहीं है लेकिन साकार में वो सूक्ष्म रूप में बाबा हम सबके साथ हैं, और हमारी बड़ी दीदियां हैं, दीदियों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिलती है सेवा की या कोई भी, बस हमारा काम है हाँ करना, हाँ जरूर, भले हमारे में सामर्थ्य न भी हो लेकिन बाबा ने यह सिखाया है, बाबा ने या निमित्त आत्माओं ने कोई कार्य बोला, हमने हाँ किया, बस वो कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा विधि भी बताता है, करवाता भी है, सफलता भी दिलाता है और वो कार्य हो जाता है। तो ये बात को हमने सीखा कि वरदान कैसे लिया जाए। तो वरदान के लिए एक तो ये है कि निमित्त आत्माओं के जो भी विधि है, पहले साकार में बाबा थे, दादियां थे, अभी वो ही पार्ट हमारी निमित्त बड़ी दीदियां, मोहनी दीदी, जयंती दीदी वगैरह, मुन्नी दीदी आदि आदि ये सब कर रहे हैं, इनके द्वारा बाबा करा रहा है। तो उसको हम बिल्कुल साक्षी होकर के करें कि बाबा इनके द्वारा कहलवा रहा है और ये कार्य हुआ पड़ा है, बस मेरे हाँ कहने की देर है, बाकी साधन सब विधि सब कुछ बाबा सुझाएगा, निमित्त आत्माओं को भी बुला लेगा, उनके द्वारा करा देगा और इस प्रकार से ये कार्य हुआ पड़ा है। तो एक तो विधि ये है कि हमारे संकल्प में दृढ़ता हो, हमारा स्नेह वश कार्य हो, और साथ साथ हम जीवन के अंदर बैलेंस रख के चलते रहे, हमारा सृष्टि की समस्त आत्माओं के प्रति रहम दिल की भावना हो। रहम दिल ये बाबा ने खास बताया है, वर्तमान समय अभी बच्चों को रहम दिल होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारी आत्माएं दुखी हैं। अभी भी परिस्थितियां देखो, कितने युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई क्रिश्चियंस का वो चल रहा है, इवन ईद के दिन भी वो प्रॉब्लम रही, कितना क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में हुआ, यरूशलेम वगैरह जो धार्मिक प्लेसेस आदि हैं। तो धर्म युद्ध और एटॉमिक युद्ध और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं का, बाबा ने जो तीन साक्षात्कार किए थे सृष्टि परिवर्तन के, वो तीनों वर्तमान समय दिखाई दे रहे हैं। तो इस कारण से हमें अपनी तैयारी रेडी रखनी है, और वो हमारी तैयारी क्या है, अभी जैसी परिस्थिति हो रही है तो वो परिस्थिति में तो देखो बोलने सुनने का टाइम ही नहीं रहेगा। सेंटर हैं, लोग आते जाते रहेंगे इक्के दुक्के, लेकिन कोई बहुत बड़ी सेवाएं बाहर करने का मौका मिले, बहुत लोग आए, वो परिस्थितियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी और कौन सा साधन हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा। बाबा ने कहा अब आपको अपनी चाल चलन और चेहरा ये साधन ये आपको ऐसा रखना पड़ेगा बस खुशनुमा चेहरा रहे। और हमारा चेहरा इसीलिए अभी आवश्यकता ये है, हमारे सबके सामने तो साकार बाबा थे मम्मा थे, तो बाबा को भी हमने अंत में देखा। जब हम आसाम जा रहे थे तो बाबा से कहा बाबा बताया जैसे आपको डिफिकल्टी वहाँ, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे समय पर बाबा बुला लेगा, बस तुम जाओ आराम से, समय पर सारे कार्य संपन्न कराएगा बाबा और समय पर बुला लेगा। तो वहाँ पर गए 67 में 68 69 में, तो वहाँ पर 69 में जाने का प्रोग्राम बन रहा था देहरादून, जहाँ से हम गए थे म्यूजियम बनने के लिए निमंत्रण आया था बहन जी का, लेकिन बाबा को लिखा तो बाबा ने कहा बच्चे ठीक है वहाँ जाओ लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ। तो बाबा की ये जो डायरेक्शन थी, जनवरी का मास था 12-13 तारीख थी, तो तुरंत ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया जॉब में और बाय फ्लाइट। उस समय की बात है 67 की, जब 69 की, तब फ्लाइट में वहाँ से कलकत्ता दिल्ली आए और उसके बाद ट्रेन से मधुबन पहुँच गए। तो जनवरी 17 जनवरी 69 को मधुबन में बाबा के पास पहुँच गए और बाबा ने जो कहा था बच्चे समय पर बाबा बुला लेगा, तो इससे बढ़िया और क्या समय हो सकता था कि 17 जनवरी को बाबा ने बुला लिया और 17-18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। उसमें क्या देखा वो वरदान की बात बताते हैं आपको, किस प्रकार से बस बाबा 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, रात्रि क्लास बाबा करा रहे थे, हम भी सामने सुन रहे थे हिस्ट्री हॉल में, और जैसे कहा ना जो जिसका इष्ट देव होता है उससे संकल्प कामना करते हैं, तो हम सुन रहे थे 20-25 लोग होंगे मधुबन वासी और बाहर की तो एक पार्टी और थी और कोई था ही नहीं। हम और हमारे लौकिक पिताजी हम लोग दोनों पहुंच गए तो मुरली सुन रहे थे क्योंकि 18 जनवरी की रात्रि क्लास, गौर से सुनना आप कि कैसे प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पर रात्रि क्लास में मुरली सुन रहे थे। सुबह 18 जनवरी को बाबा ने क्लास में मुरली नहीं चलाई थी, सारे योग ही कराया था, तो मुरली सुनते सुनते हमारे मन में जस्ट एक संकल्प आया, हाँ बाबा कुछ बोले और हमारे लिए पुरुषार्थ की बात, इतनी दूर रहते हैं आसाम में तो बाबा कुछ बोले, बस हमारे मन में तो संकल्प था, लेकिन ब्रह्मा बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी और बाप दादा दोनों एक ही रथ पर विराजमान, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा तक वैसे ही वो संकल्प पहुंचा होगा, ना हमने किसी को बोला ना कहा, संकल्प आया बाबा तक पहुंचा और बाबा ने हमारा नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिए शिव बाबा ने, बाप दादा ने। क्या महावाक्य उच्चारे, हमें तो गर्व होता है कि संकल्प किया कुछ और बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत कि देखो ये बच्चा मोहन है, तब हमारी आयु उस समय 21 साल पास कर लिया था इंजीनियरिंग और पहली पोस्टिंग में वहाँ 22 साल की उम्र में वहाँ आसाम गए थे, तो बाबा को तक संकल्प पहुंचा देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, उस पर बाबा की मुरली 18 जनवरी की अंतिम रात्रि क्लास साकार बाबा की वो चल रही थी। और हमने अपने अंदर झांका, वास्तव में हमें अगर कोई भी आके किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, अज्ञान काल से भी। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे सामने दूसरे की निंदा कर रहा है तो दूसरे के सामने जाके हमारी भी निंदा करेगा, ये तो उसका निंदा का संस्कार है। लेकिन बाबा तक कैसे पहुंचा और बाबा ने उसे सर्टिफाई किया, ये बड़े गजब की बात है। तो एक तो ये, दूसरा 17-18 जनवरी को अव्यक्त बाप दाता जब साकार बाबा से मिले, 17 और 18 जनवरी को तो बाबा साकार में थे ना, तो बाबा से मिले, हमेशा जब भी मिलते थे बाबा से, हम कोई बात होती थी पूछते थे, बाबा समाधान करते थे। बाबा अगर कोई वहाँ की सेवा की बात पूछनी होती थी, हम उसका उत्तर देते थे। तो उन दो दिनों में हम लगभग 6 बार बाबा से मिले होंगे, 17 और 18 जनवरी को, अलग अलग मौकों पर। कभी बाबा टहलते हुए मिल गए, वहाँ बात कर रहे हैं, बाबा की झोपड़ी में, बाबा के कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, इस तरीके से मिले। और जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से पूछेंगे, बस एकदम गुम हो जाते थे, बात भी भूल जाती थी। लेकिन बाबा की कमाल थी, बाबा दृष्टि देते थे, बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। मन में क्या प्रश्न चल रहा है, क्या पूछने आए हैं, बाबा वो भी बता देते थे और उसका समाधान भी कर लेते थे। ये कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा की पहली मुख्य निशानी है। कुछ दिन पहले ही मैं मुरली पढ़ रहा था, अव्यक्त मुरली थी, शायद 84 की होगी, उसमें ये था कर्मातीत अवस्था की निशानी, कि जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वो आप सब लोगों को भी करना है। क्योंकि हमारे सामने भी अब ऐसी विकट परिस्थितियां हो रही हैं विश्व की, लोग रोते चिल्लाते आएंगे हमारे सामने, और कहने का भी उनका मार्जिन नहीं रहेगा, हम बस उनको दृष्टि देंगे और उनके मन का प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तो उनके मन को प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता कैसे होगी, जब हमारे अपने कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। नहीं तो हमारे अपने व्यर्थ संकल्प हुए तो वो जो संकल्प लेके आत्मा आई है, हमारी भक्त आत्मा, अभी हम उसके इष्ट देव हैं, जैसे हमारे सम्मुख आई है, ऐसे भक्ति मार्ग में हमारी मूर्तियों के सम्मुख वो ही आत्माएं आएंगी अपने प्रश्न लेकर के, और तब हमें समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो संकल्प लेके जाती हैं वो मर्ज हो जाते हैं, और भक्ति मार्ग में वही संकल्प फिर एमर्ज हो जाते हैं। तो अभी बाबा की एक ये स्थिति देखिए। दूसरी बात, क्योंकि कर्मातीत हम सबको बनना है, वरदान लेते 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 ही कर्मातीत बन जाए, ये सहज है। क्योंकि वरदान वो चीज होती है जो सहज रीति से मिल जाता है, पुरुषार्थ नहीं तो करना पड़ता है। तो दूसरी बात, कोई भी काम हमारा पेंडिंग ना रहे, ये ना रहे कोई भी काम कि ये मुझे करना था, ये नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कोई काम अगर पेंडिंग रहता है ना हमारा, तो अंत समय वो ही याद आता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा ने यही सिखाया, बाबा हमेशा नहीं तो कहते थे लाभ और लव का बैलेंस रखो, कई बैलेंस बताए, लेकिन अभी आवश्यकता ये सबके प्रति लव, स्नेह, प्यार। क्यों? क्योंकि ये ही आत्मा है, लव इज लॉ, ये बाबा का कहना है। लव अभी वर्तमान समय लॉ की बात कहने की बात नहीं, तो दूसरी बात बाबा नहीं है। तो कोई भी हमारे माइंड में ना किसी के प्रति न तो अति स्नेह हो न कोई दुश्मनी की भावना हो। स्नेह होगा वो भी अंत में याद आएगा, जब हमारे प्राण शरीर से निकलेंगे आत्मा निकलेगी वो याद, याद ही यही दो व्यक्ति आते हैं जिनसे या तो बहुत स्नेह हो या जिनसे कोई दुश्मनी का भाव हो, तो एक ही है। और तीसरी बात, अंतिम समय बाबा ने बचे हुए काम सब पूरे करे, म्यूजियम वाला मकान ऊपर जो म्यूजियम है वो भी रमेश भाई को अहमदाबाद भेज करके जो उसका मकान का निमित्त था उस पर साइन करे, वो मकान भी ले लिया। और चौथी बात, उस दिन चूंकि बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई थी, अंत शाम को बाबा ने सबको इंस्ट्रक्शन दी, सब भोजन करके आए हैं और भोजन करके आने के बाद तब मुरली सुने, नहीं तो हमेशा मुरली 9:15 होती थी और सब कोई बाद में करते थे कोई पहले। बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा को तो मालूम था आज का ये दिन मेरा बच्चों से अंतिम मिलन है, क्योंकि उस दिन की इतनी घटनाएं थी, सारी पत्रों के उत्तर लिखे आदि, कोई भी काम बाबा ने पेंडिंग बचा हुआ रहने नहीं दिया। और इस प्रकार बाबा एक भी उस दिन न खांसी आई न कोई भी व्याधि हुई, जो ये शो करता है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल अंत में संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेगा। और संपूर्ण विजय प्राप्त करके बाबा गए, बाबा ने दरवाजे के पास हाथ हिलाया और बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा ने पहले कभी नहीं कहा, उसी दिन ही कहा। बाबा कमरे में गए, मेरा ये सौभाग्य है क्योंकि मैं यहाँ था, मैं छत पर टहल रहा था तो जमुना प्रसाद भाई बड़ी तेजी से साइकिल पर निकले, तो मैंने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो अभी रात में? कि दादी भेज रही हैं, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तो वो उधर गए, मैं भी नीचे उतर के आया और मैंने भी बाबा के कमरे में पीछे की, पहले तो एक ही गेट था पीछे वाला, अभी तो बाबा का सामने वाला और वो सब गेट है, तो देखा तो हमें तो दादी की पीठ ही दिखाई दी और बाबा चारपाई पर बैठे हुए, बाबा का दादी के हाथ में हाथ, और इस प्रकार से बाबा ने सबसे छुट्टी ली। तो अंत में हम भी अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त करें, ये ब्यूटी है। अगर दुनिया की तरह हम भी मर गए, मरना तो सभी को है, लेकिन हम अपनी इच्छा मृत्यु से प्राप्त करें वो अभी से ही हमको संकल्प करना पड़ेगा, बाबा ये काम है, ये आपको कराने हैं, ये काम पूरे हों। और अपनी इच्छा, हाँ बाबा अब मैं आपके पास आई की आई, आया की आया, मेरे सब काम पूरे हुए। तो बस अभी आप यहाँ से जा रहे हैं और अपने अपने स्थानों पर जाएंगे, तो यही संकल्प लेके जाएं कि बस मुझे अब वरदानों से ही पलना है। पुरुषार्थ तो करेंगे लेकिन जिसमें बाबा का वरदान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, आपने बहुत सुंदर साकार बाबा के संग के अनुभवों का खजाना खोलकर हमें भी उन दिनों में पहुंचा दिया। एक बार पुनः हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया भाई साहब।